इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि ज़ोया और अयान की शादी हो जाती है। इस अध्याय में सारा और इमरान मिलते हैं और इमरान सारा को पसंद करता है। अनन्या ऑफिस जाती है जहां उसकी आर्यन से मुलाकात होती है और वो सानवी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर पर आर्यन और सानवी एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। उनके बीच अनबन साफ दिखाई देती है। इंद्र के घर पर सभी मिलने जाते हैं जहां सानवी और आर्यन की मुलाकात होती है और दोनों के बीच अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आर्यन को सानवी और इंद्र के बीच बढ़ती नज़दीकियां देखकर गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। नाउ नेक्स्ट। विक्रांत कपूरिया अपने घर में बने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी बड़ी सी टेबल पर फाइलों और डॉक्यूमेंट्स का ढेर बिखरा पड़ा था। लैपटॉप स्क्रीन पर कई चार्ट और फिगर्स खुले हुए थे। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ छलक रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अब भी दस्तावेजों पर गड़ी हुई थीं। दरवाज़ा धीरे से खुला और उसकी वाइफ जेसिका अंदर आई। विक्रांत, ये सब कब तक चलेगा? रात के 11 बज रहे हैं, अब कमरे में चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। विक्रांत ने बिना नज़र उठाए कहा, जो टेंडर सबमिट होने वाला है मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाए। हर हाल में मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए जेसिका। यह हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, प्रेस्टीज का सवाल है। वो फिर अपनी फाइलों में बिजी हो गया था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। जेसिका उसकी टेबल तक आई और फाइलों पर नज़र डाली। मगर तुम्हारी टीम कई हफ्तों से इसी प्रोजेक्ट पर लगी हुई है। सब डॉक्यूमेंट्स बार बार चेक हो चुके हैं, फिर तुम बार बार इतना क्यों देख रहे हो? यकीन रखो, ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। विक्रांत ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये टेंडर इतना बड़ा है कि अगर हमें मिल गया तो हमारी कंपनी अगले लेवल पर पहुंच जाएगी, और अगर नहीं मिला तो आर्यन राजवंश जीत जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुझे हर हाल में आर्यन राजवंश को हराना है। उसकी आंखों में नफरत की एक हल्की चमक थी। जानती हो जेसिका, मैंने जो कुछ बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे पास न बाप दादाओं की दौलत थी, न कोई बिजनेस का रेडीमेड साम्राज्य। सब कुछ मैंने शून्य से शुरू किया। और उस आर्यन राजवंश को देखो, उसे तो सब कुछ बना बनाया मिला। लोग उसे बिजनेस टाइकून कहते हैं। असली टाइकून तो मैं हूँ, जिसने जमीन से आसमान तक सफर तय किया। उसने किया ही क्या है? जेसिका उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। जानती हूँ मैं, मुझे सब पता है। देख लेना, तुम एक दिन उससे आगे निकल जाओगे, उसने शांत स्वर में कहा और विक्रांत के सामने बैठ गई। विक्रांत ने अपनी कुर्सी पीछे की और कुछ फाइलें उठाकर टेबल पर पटक दी। ये प्रोजेक्ट मेट्रो सिटी के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डील का है, नए इंडस्ट्रियल हब का। जो कंपनी ये प्रोजेक्ट जीतेगी, अगले 5 साल तक पूरे शहर के डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पास होंगे। सोचो कितना बड़ा मौका है। ये मौका मैं किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा, जेसिका ने गंभीरता से कहा। लेकिन तुम अपनी हेल्थ खराब कर लोगे इस तरह। कम से कम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी टीम बाकी का काम देख लेगी। चलो उठो अब। विक्रांत ने सिर हिलाया। नहीं, ये प्रोजेक्ट मैं पर्सनली देखूंगा। मेरी साइन के बिना एक भी पेपर सबमिट नहीं होगा। आर्यन राजवंश को हराना मेरे लिए सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं है, ये मेरी पर्सनल जंग है। लोग सोचते हैं कि वो जीनियस है, लेकिन अब की बार मैं साबित कर दूंगा कि जीत असली मेहनत की होती है, इनहेरिटेंस की नहीं, जेसिका हल्की मुस्कान के साथ बोली। ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगी। आज की रात हम दोनों ये प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे। विक्रांत ने उसकी ओर देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। ठीक है, फिर कॉफी बनाओ, क्योंकि आज की रात लंबी होने वाली है। दोनों टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। फाइलें खुली, पेन चलने लगे, लैपटॉप पर ग्राफ और चार्ट चेक होने लगे। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी टेंशन और दृढ़ निश्चय था। आर्यन राजवंश, जैसे वो उसे गांव को अगर घर से निकाल देगा तो जैसे सानवी उसके दिल से भी चली जाएगी। अब मुझे तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बी के साथ उसका रिश्ता कैसा होने वाला है। आर्यन राजवंश इंद्र के घर से सीधा अपने घर पहुंचा था। उसके दिमाग में सानवी के प्रति बेहद गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। उसे वो एक लालची और चालाक लड़की लगी जो सिर्फ अमीरों को फंसाने में माहिर थी। आर्यन को लगता था कि जब वो उसे अपने जाल में नहीं फंसा सकी तो उसने इंद्र को फंसाने की कोशिश की, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। उसका दिल सानवी के लिए एक अजीब सी कोमलता महसूस कर रहा था। उसे बार बार उसकी मासूम सी मुस्कान याद आ रही थी, उसकी धीमी हंसी, उसके सादे कपड़े और हवा में उड़ते उसके बाल, सब कुछ जैसे आर्यन के दिल पर दस्तक दे रहे थे। वो अपने कमरे में गया। जैसे ही उसने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली, उसकी नज़र उस गाउन पर पड़ी, वही गाउन जो सानवी ने उस रात पहना था जब वो पुल से गिर गई थी और उसके कपड़े गीले हो गए थे। आर्यन ने खुद उसे ड्राई क्लीन करवाया था और उसकी अलमारी में रख दिया था। उसने गाउन उठाया और कुछ देर यूं ही देखता रहा, मन ही मन बुदबुदाया, मुझे ये कपड़े उसे वापस कर देने चाहिए। शायद जैसे ही ये उसके कपड़े मेरे घर से चले जाएंगे, वैसे ही वो मेरे दिल से भी निकल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वो मेरे दिल से कैसे निकल सकती है? मैं क्यों उसे भूलना चाहूं? आखिर ऐसा मेरे साथ हो क्या रहा है? आर्यन खुद से नाराज था। उसका दिमाग उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है, मगर दिल हर बार उसकी मासूमियत के सबूत पेश कर देता। वो खुद को आईने में देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं वो खुद ही तो सानवी को गलत नहीं समझ रहा। वो बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसका दिल और दिमाग जैसे आपस में जंग लड़ रहे थे। एक तरफ नफरत, शक और गुस्सा, दूसरी तरफ प्यार, कोमलता और अजीब सी चाहत। आर्यन धीरे से मुस्कुरा दिया, मानो खुद को समझा रहा हो। शायद वक्त ही बताएगा कि सानवी मेरे लिए क्या है, एक गलती या मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किस्मत। जयपुर में मेहंदी का प्रोग्राम खत्म होते होते सभी थक चुके थे। शाम को सभी अपने कमरों में चले गए ताकि रात के खाने से पहले थोड़ी देर आराम कर सकें। मानवी जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने देखा कि वेद पहले से ही वहां था और अवनि के साथ खेल रहा था। कभी वेद अवनि के गले में बाहें डाल देता तो कभी उसके गाल पर प्यार से किस कर देता। डैड, हमारा घर कहाँ है? अवनि ने अचानक पूछा। वेद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादी माँ कह रही थी कि हम जल्दी अपने घर जाएंगे, चाचू की शादी होने दो, फिर हम सब साथ चलेंगे, वेद ने कहा। ठीक है डैड, अवनि ने मासूमियत से कहा। आज मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय किया ना? वेद ने प्यार से पूछा। बहुत किया, अवनि ने हंसते हुए कहा। मानवी उन दोनों को एक नजर देखती रही और फिर थकी थकी सी सोफे पर बैठ गई। उसकी थकान इतनी थी कि वो धीरे से वहीं लेट गई। अवनि ने मानवी को लेटे हुए देखा और तुरंत डैड की गोद से उतरकर माँ के पास आ गई। क्या हुआ मॉम? उसने प्यार से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मानवी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। तो मैं आपका सिर दबा देता हूँ, अवनि ने कहा और अपने नन्हे हाथों से माँ का सिर दबाने लगी। मानवी ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया और कहा, अब मेरा सिर ठीक है, अब खेलो। वेद ने भी कहा, मम्मा से पूछो चाय पियेंगी, चाय पीने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मॉम, आप चाय पियोगी? अवनि ने पूछा। हाँ, मानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वेद ने इंटरकॉम से चाय मंगवाई। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। मानवी ने चुपचाप कप उठाया और चाय पीने लगी। चाय सिर्फ उसी के लिए मंगवाई गई थी क्योंकि वेद को चाय पसंद नहीं थी। चाय पीते हुए मानवी के दिमाग में कई ख्याल आने लगे। पिछले 5 सालों में उसने कितनी मुश्किलें अकेले सहली थीं। उसकी सहेली रीता जरूर उसके साथ खड़ी रही थी, लेकिन ऐसे वक्त में कोई अपना जो उसे बस अपनेपन का एहसास कराए, ऐसा कोई नहीं था।
आज वेद और अवनि को देखकर उसके दिल को अजीब सी तसल्ली हो रही थी। वेदिका और बलवंत ने भी इन दिनों उसे इतना अपनापन दिया था कि वो खुद को इस परिवार का हिस्सा महसूस करने लगी थी।